آگے عقیدے کی کچھ خرابیوں کا ذکر ہے. فرمائیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جس یادیں چھوٹے بند کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ المسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے, اللہ کی مار ان پر, یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے, عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, عقیدے کی وجہ سے فرق ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بینگ اے ہیومن ہر ایک برابر ہے. وجہ کیا کہ شریعت ایجاد کرنے کے لیے نہیں اللہ نے دی, اس کو مانو. اپنی مرضی سے کوئی اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دے, کوئی کسی کو بنا دے, تو یہ تو بہت ہی زیادہ وہی بات ہوگی کہ آپ کسی ملک میں جا کر اس کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم. اور ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا تھے, خدا کی مار ان پر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہ دیا گیا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں, پاک کے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں, یعنی ان کے باطل نظریات کی بات ہے. کسی نے عیسیٰ کے ناطے سے کی, کسی نے حضرت عزیر کے ساتھ. اور حضرت عزیر کو جیوز کا ایک فرقہ کیوں اللہ کا بیٹا کہتا ہے؟ وہی پیچھے جو واقعہ ہو, او کلذی مر علی قریہ, تیسرے پارے کے شروع میں آپ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک فوت کیے رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. اب دوسری بات, یہاں یہ جو نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا, اس کو بھی سمجھ لیجئے. عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ, نصارہ تو کبھی نہیں اپنے پریس کو اور اپنے علماء کو خدا کہتے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا وہ ان کے حلال کو بغیر سند کے, بغیر دلیل مانگے حلال نہیں کہہ دیتے؟ اور جس سے وہ روکتے ہیں اس کو بغیر کسی قرآن سنت کی مثال, جیسے آج سب لے لے کہ اس کے بغیر اس کو حرام نہیں کہتے؟ کہا یہ تو کرتے ہیں. کہا یہی ہوتے علماء کو خدا بنانا. یا پھر شخصیت پرستی کی بات آتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب علماء کا فیصلہ اللہ کے فیصلے پہ غالب آ جائے, واضح حکم موجود ہو, مگر میرے امام, میرے مسلک, میرے شیخ, میرے پیر فلاں کی یہ رائے ہے, اور وہ اللہ اور نبی کی بات کو چھوڑ کر اگر کسی انسان کی بات, اس کے فتوے اور اس کی بات کو لے لے گا, تو یہ اندھی تقلید کہلائے گی. آج دنیا میں ہم ایسا نہیں کرتے. عقل کے ساتھ دوا استعمال کرتے ہیں, عقل کے ساتھ دنیا میں چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چیزوں کو یہاں پیش کر دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کے عزائم, یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم, بڑی خوبصورت آیتیں, تدبر کی آیتیں بھی اس بارے کی یہ ہو سکتی ہیں کہ کس طرح سے ان آیات کو اللہ نے آج مسلمانوں کے سامنے پیش کر کر ماضی کے آئینے میں حال اور مستقبل دکھا دیا. کیسے؟ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ چاہتے ہیں, کون؟ جن کا اوپر ذکر ہوا, کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں, مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں, خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہ کون بجھانا چاہتے ہیں اور کیسے بجھائیں گے؟ اور موکی پھوکے کے پروپیگنڈاز, کل بھی تھا آج بھی ہے. جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو وہاں کے جو موجود لوگ تھے, جو دین کے نام پہ خود کو بہت بڑا کہہ چکے تھے, کوئی دن شاید نہ ہو کہ جس دن وہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کریں. ان کے منہ تھے, آج کے منہ میڈیا ہے. آج کی پھوکے وہ پروپیگیشن ہے کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع ہوتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں خوشی کی بات کیا ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے, وہ کبھی اس میں کوئی پورے نہیں ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیں, لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں. اور آپ نوٹ کیجئے گا, جتنا اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اتنا ہی اسلام زیادہ پھیلتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ ہاتھ میں شمع ہو, کبھی آپ نے موم بتی چلائی ہو؟ پہلے تو لوڈ شیڈنگ میں جلاتے تھے یا بجلی کے نہ ہونے پہ, آج کل ہم ماشاءاللہ کینڈل ڈنر اور وہ جو بھی اس طرح کے موقع پہ جلا لیتے ہیں. لیکن امیجینیشن میں لائیے کینڈل کو. اب کینڈل آپ کے ہاتھ میں ہے, اب کوئی اس کو بجھانا چاہتا ہے, پھونک مارتے ہیں. آپ تیز پھونک ماریں گے نا تو بجھے گی, اور اگر آپ کی پھونک اتنی تیز نہ ہو, ذرا ہلکی ہو, تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اور تیز چلتی ہے. کسی کی پھونک میں اتنا اثر ہی نہیں کہ اسلام بجھے. جتنا یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اتنا اسلام عام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا, بدنام ہوں گے تو کیا نام تو ہوگا. جتنے یہ بڑے بڑے فتنے آج سے 11-12 سال پہلے اٹھے اور ایسی چیزیں آئیں کہ میڈیا پہ اسلام گیا, اتنا اسلام پھیلا. 9/11 کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, کیا ہوا؟ اس کے بعد قرآن ریکارڈ کی حد پہ سیل ہوئے, पूरे मीडिया पे लोगों ने वेबसाइट्स को जाके छान मारा। हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं दारुसलाम वालों के साथ जो बुक्स का काम करते हैं, तो उन्होंने तब ये हमें बताया था कि उसके बाद इतना कुरान बिका है, इतना कि जेलों में, और इधर लोग कहते हैं इस्लाम है क्या, हम इसको देखें। तो मुझे फिक्र की जरूरत नहीं। याद रखिए कि बुझाने में सबसे ज्यादा कौन खतरनाक है? आप अपने हाथ में मोमबत्ती लेते हैं, दूसरे लोग दूर बैठे हैं, सबसे ज्यादा इस कैंडल को किससे खतरा, कौन इसको बुझा सकता है? जिसके हाथ में मोमबत्ती है। इस्लाम को बुझाने में मुसलमान जितना खतरनाक किरदार आज अदा कर रहा है, दूसरे नहीं कर रहे। आज आप अपने इस्लाम की शम्माओं को रोशन करके चलें, दुनिया में फिरें, फिर देखें कि कौन ऐसा होगा। लेकिन होता पता क्या है, इन फूकों से बीमार ईमान वाले मुसलमान झड़ जाते हैं। वो अपनी गाड़ियों में स्काफ और छोटा सा कुरान भी रखते थे, वो भी निकाल दिया कि कहीं चेकिंग में पता ना चल जाए ये मुसलमान की गाड़ी है। ये वही दौर है ना कि जब फिर नामों से मोहम्मद नाम उतरा, जब मर्दों की दाढ़ियां कटी, और जब लड़कों को उन्होंने पकड़ के कहा कि खबरदार, अगर अब्दुल्ला लफ्ज कहलाया इसको अब्दू कह दो, और इसको मोहम्मद कह दो, कुछ भी कह दो, बस किसी तरह से मुसलमान हो। ये फितने क्यों आते हैं? मुसलमानों में से कमजोरों को अलग करो, इस्लाम कमजोर ईमान वालों से पाक हो जाता है। जितना कुरान पर तनकीद की गई, नबी पर इल्जाम लगाए गए, उतना ही अल्लाह ने इस्लाम को दिया। आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ये काम करके मुझे और आपको तसल्ली दिला रहा है कि अगर तुम मुसलमान इस इस्लाम की शम्मा को मजबूती से थाम लो तो कोई नुकसान नहीं होगा। कहते ना, घर का भेदी लंका ढाए। जितना हम मुसलमान इस्लाम का नेगेटिव रवैया और एटीट्यूड शो करके दिखाएंगे, उतना लोग इसको बुरा करेंगे। और आप आज भी इस वाक देख लें, इस्लाम पढ़े लिखे मुल्कों में फैल रहा है। आज आप इसके मिसाल वेस्ट और यूरोप को देख लें, जहां लोग लॉजिकली मुस्लिम हो रहे हैं। इसके बरक्स ईसाइत पसमानदा, गरीब और मुफलिस और फाका जदगान मुल्कों में फैल रही। क्यों? वो जाके इनको फीड करते हैं, वो दवाएं देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, देते हैं। क्यों? कहते हैं कि ये लो, और वो गरीब बेचारे अपनी दुनिया की चीजों की खातिर वो लेते हैं और फिर उस दीन में आते हैं। इस्लाम बहुत लॉजिकल दीन है, पढ़े लिखे लोग ही इस्लाम को लेकर चलते हैं। तो फिर मैं और आप आज अपने आप से कहें, इस इस्लाम के काम को मैंने अपना साथी काम समझना है। इस्लाम मेरा बच्चा है, मैंने ही इसको संभालना है। आज या तो मुहाजिर बनना है या अंसार बनना है। आज गैरों से ज्यादा यकीन कीजिए, निफाक वाले मुसलमान इस्लाम पर तनकीद करते हैं, जिनको आप सो कॉल्ड मुस्लिम कहते हैं, ये अपने फोरम और अपने टॉक शोज में आकर इस्लाम की बातों की धज्जियां उड़ा रहे थे। पहले जो काम कुफार करते थे, आज मुसलमान करते हैं। और इस तरह की बातें पेश करके जो अमल करने वाले मुसलमान हैं, उनको लोगों की नजरों में वो बहुत ही फंडोज और क्या कुछ करके पेश करते हैं। तो अल्लाह का फैसला सुनिए, बड़ी प्यारी आयत है। इससे अगली भी 3 दफा यह आयत आपको कुरान पाक में मिलेगी, जिसमें से पहली दफा यहाँ आ रही है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक्की लियुसहिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है, ताकि इसे पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे, ख्वा मुशरिकों को ये कितना ही नागवार हो। ये अल्लाह का फैसला। बात पीछे भी इस पर थोड़ी बहुत हुई थी कि इस्लाम दब के रहने वाला दीन नहीं है। आपका लाया हुआ दीन कौन सा दीन है कि जो हमेशा गालिब रहा? नबी सल्लम के बाद खुल्फाए राशिदीन का दौर आया। 4 खुल्फा थे, हजरत अबू बकर को 2 साल की मोहलत मिली, हजरत उमर को 10 साल की मिली, इसी तरह उस्मान और अली का दौर आया। तकरीबन 20-22 साल का ये दौर खिलाफत जो था, इसमें लोगों ने इस्लाम को उसकी असल शक्ल में देख लिया। हजरत उमर के दौर में लोग जक़ात लेकर फिरते थे और कोई एक्सेप्ट करता नहीं था, और हजरत उमर रातों को उठ उठ के चक्कर लगाते थे और कहते थे अगर दरियाए फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा रह गया तो उमर से उसका सवाल होगा। और रातों को गर्ज कर रहे थे, एक रात गए तो देखा एक घर में से कराहने की आवाज आ रही है। नॉक किया, पूछा क्या मामला? कहा बीवी इस वक्त दर्द ज़हन में है। कहा अच्छा, जरूरत है? घर गए, अपनी बीवी को लिया। कौन थी बीवी? फर्स्ट लेडी थी, खलीफा की बीवी थी। उसने जरूरी सामान लिया, जाकर एक आम शहरी की बीवी की मदद की बच्चे की डिलीवरी में। ये दौर भी जमीन ने देखा कि हुक्मरान छुप के नहीं बैठते थे, वो सड़कों पे होते थे। और इस आसमान ने उमर को देखा कि अपनी कमर पे बेवाओं के लिए आटा चावल लेकर आते थे। इतने वाक्यात हजरत उमर के, अगर आपको सारे सुनाने बैठ जाओ तो आप परेशान हो जाए। किसी एक औरत को अपने शौहर की जुताई में देखते हैं, रात को गुजरे और एक औरत शेर पड़ रही है, और अशार का खुलासा क्या था? अपने शौहर को मिस कर रही है। पूछा ये कौन औरत है? कहा अल्लाह के नबी, इसका शौहर जिहाद पे गया हुआ है। काफी अरसा हो गया, इसका दिल चाह रहा है कि वो मेरे पास हो। अपनी बेटी हफ्सा के पास आया जो महातुल मोमिनीन में से थी, कहा बेटी अल्लाह हक में शर्माता नहीं, मुझे ये बता कि एक औरत कितनी देर के बाद फिर अपने शौहर को चाहती है, यानी बीवी को जरूरत की शौहर कब पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर उससे दूर रह सकती है। कहने लगी 4 महीने, इसके ज्यादा नहीं औरत रह सकती। कहा अच्छा। अगले दिन हजरत उमर ने कैबिनेट बुलाई और एक ऐलान कर दिया, कानून बना दिया कि आज के बाद कोई शादीशुदा मुजाहिद 4 महीने से ज्यादा सरहदों पे नहीं रहेगा, उसको 4 माह से पहले वापस आना पड़ेगा और उसकी जगह दूसरे आएंगे। एक औरत की तलब ने उमर का कानून बदला दिया। ये थे हम, ये है इस्लाम का निजाम। आज हम किधर रो रहे हैं? मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे कभी आप गलती से कमीज उल्टी पहन लें, कैसा लगता है? सांस घुटता है ना, अगर सीधा उल्टे में और उल्टा सीधे में डाल लें तो चला जाता है, दम घुटता है ना। आज हम जब अपने दीन पे अमल की बात करते हैं और लोगों को अपने दम घुटते हुए दिखते हैं ना, उसकी वजह यह कि हम उल्टे कपड़े पहनाते हैं। आज अब शरीयत को वैसी लागू कर दें जैसी को है, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह फायदा होगा। इन सारी चीजों को लाकर देखिए, ये देखिए कि इस्लाम चला तो सही ना। बात लोग कहते क्या हुआ, दौरे खिलाफत थी या उसके बाद तो नहीं हुआ, लेकिन एक दफा दुनिया को दिखा दिया कि इस्लाम का निजाम प्रैक्टिकल है, और 1,000 साल तक इस जमीन और आसमान ने देखा कि मुसलमान इस पूरी दुनिया को रूल करते थे। पूरी दुनिया का खराज आप कह लीजिए कि मुसलमानों के पास आता था, सूरज के तुलू होने से लेके गुरूब होने की सब जगह मुसलमानों के पास थी। साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अलजेब्रा, और इसी तरह से जिसको इल्मे जराही बोलते हैं, ऑपरेशंस करना, ये सब इस्लाम ने दिए मुसलमानों को। एल बिरूनी कौन था, अर्शमीदस कौन था, ये मुस्लिम्स थे। लोगों को दिखाया ये आज क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इस्लाम के पुर्जे बदल दिए, हम कंप्रोमाइजिंग हो गए। देखिए जब पहली दफा जहाज बना था, आपको तो राइट ब्रादरान ने बनाया था और चलाया था, सिर्फ 6 मिनट की पहली फ्लाइट थी और उसके बाद वो जहाज गिरा और वो डूब गया। लेकिन उन 6 मिनट्स ने लोगों को यह बता दिया कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक इंसान जहाज को उड़ा सकता है। आज दुनिया में हजारों की तादाद में मेरा लाइक सिर्फ कंपनीज होंगी, जहाज तो शायद लाखों करोड़ों में हो, ऐसी ही है ना। तो जब एक चीज मुमकिन थी तो आज हो गई, तो आज क्यों नहीं? और यहां ये भी समझ लीजिए लियूस किरा वाला दीन ही कुल्ली में, कि पहले अंबिया सिर्फ दीन की तबलीग के लिए आए थे, और वही हजरत मूसा और ईसा की बात जो पिछले सबक में देखी थी, तो अल्लाह के नबी ने दीन को नाफिज करना था, और निफाज के लिए गलबा इस्लाम लाजिम है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको दिखेगा, अब आगे हम देखेंगे आयत 38 से आखिर तक तबुक का सफर है, जब इसमें बैरून अरब गलबा इस्लाम की बातें हुई और रोमन्स के खिलाफ है, हर तरफ था, हर एक को जाना है, वहां होगा। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इतना अहम है कि माल और दौलत वो काम नहीं कर सकते, और हकीकत ये कि जहां जान की जरूरत हो, आपकी जात की जरूरत हो, वहां आपका माल भी काम नहीं आता। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आज हमें ऐसे लोगों को इस्लाम को दिखाने वाले बन जाए। अल्लाह मोहताज नहीं है, आज भी पूरी दुनिया में अल्लाह इस्लाम ला सकता है। अल्लाह आज सारे काफिरों को मारना चाहे, 1 सेकंड लगेगा, लेकिन वो मुझे और आपको ये जॉब दे रहा है कि तुम इस इस्लाम को लेकर चलो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और कोई सूरज को देख के जाके भूख मारे कि मेरी भूख से ये सूरज बुझ जाए, तो ये कभी भी नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम ऐसा ही करें कि जो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं। अगली हिस्से में आप देखिए कि अहले किताब के उलमा की खयानतों का जिक्र है, और दुख के साथ कहूंगी कि आज उम्मत मुस्लिमा के दीनदारों में कुछ हद तक जब ये चीजें आई, इसलिए लोगों ने इस्लाम को फिर गालिब से ज्यादा मकलूब दीन समझ के कर दिया, और वो कह के जब दुनिया का माल दीन वालों की भी पसंद की चीज बन जाए, ऐसे लोग फिर कभी दुनिया में अच्छा इस्लाम नहीं लेकर आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों जो ईमान लायो, इन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों का हाल यह है कि वो लोगों के माल बातिल तरीकों से खाते हैं और इनको अल्लाह की राह से रोकते हैं। दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो इनको जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और इनको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा इसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दहकाई जाएगी, फिर इसी से इन लोगों की पेशानी और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। और क्या कहा जाएगा, ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। समझ आए? वो माल जिस पे जकात नहीं दी जाती उसको कंस कहा जाता है। ऐसे माल को क्यामत के दिन अल्लाह ताला आग में तपाकर लोगों की पीठों पे दागेगा। हम सब अपना चंद सेकंड के लिए मुहासबा कर लें कि क्या हमने अपने माल की जकात दे दी, क्या अभी भी ऐसा कुछ हमारे सर पे तो नहीं माल पड़ा होगा कि जिसकी वजह से हम कल कयामत के दिन इस बुरे अंजाम को पहुंचे, और अगर देर हुई तो उसको वो जल्द से जल्द अदा करने की जरूरत है, इसलिए कि किसी को नहीं पता कि कल उसकी जिंदगी में आए कि ना आए। लेकिन याद रखिए कि ये चीजें हम सबको ये भी सिखाती हैं कि अल्लाह ताला की नजर हर चीज पे, बस जब हम कोई एक खास किस्म की नेकी करके मुतमईन होके बैठ जाते हैं, हम कहते हैं बस है ना, कर जो लिया ये काम, अब इसके बाद और क्या काम करें। लेकिन जब एक पर्चे में आपके पूरे नंबर भी आ गए, माशाल्लाह रोजे के पर्चे में पूरे नंबर हैं, और अगर जकात के पर्चे में नंबर पूरे नहीं होंगे तो अल्लाह ताला को फिर उसके बारे में पूछने का मुझे और आपको हक है।